नौकरी की किताब सत्र 18 नौकरी का प्रवचन नौकरी 29 से 31 जॉन वाल्टन द्वारा। यह डॉक्टर जॉन वाल्टन और जॉब की पुस्तक पर उनकी शिक्षा है। यह सत्र 18 है। जॉब का प्रवचन जॉब 29 31। नौकरी में प्रवचन अनुभाग का परिचय 12:24 से 12:58। अय्यूब की पुस्तक का प्रवचन खंड 3 प्रमुख प्रवचनों से बना है, 1 अय्यूब द्वारा, 1 एलीहू द्वारा और 1 यहोवा द्वारा। लेकिन यह पहले से ही भ्रामक है क्योंकि उनमें से प्रत्येक के पास कई भाषण हैं और इसलिए हमारे पास जटिल प्रवचन हैं। अय्यूब के 3 भाषण हैं, एलीहू के 4 और यहोवा के 2। यह एक बहुत ही दिलचस्प ऑफसेटिंग पैटर्न है जहां ऐसा लगता है कि एलीहू मुख्य वक्ता है, लेकिन निःसंदेह ऐसा नहीं है। अय्यूब के 3 भाषणों का सारांश अय्यूब 29 से 31 12:58 से 2:39। इसलिए इस खंड में हम प्रवचन खंड में अय्यूब के प्रवचनों उनके 3 भाषणों पर एक नजर डालने जा रहे हैं। संक्षेप में अध्याय 29 में अय्यूब अतीत की सुसंगतता के बारे में सोच रहा है। आह वे अच्छे पुराने दिन जब दुनिया के साथ सब कुछ सहज और सही था। प्रतिशोध का सिद्धांत काम कर रहा था और वह एक खुशमिजाज व्यक्ति था, भगवान से डरता था और सब कुछ ठीक चल रहा था। वह अध्याय 29 है। अध्याय 30 वर्तमान की असंगति का वर्णन करता है। यहां हमें अय्यूब का एक बहुत ही मार्मिक कथन मिलता है कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। जाहिर तौर पर वह सिर्फ गोबर के ढेर पर नहीं घूम रहा है, वह शहर और इस तरह की चीजों के आसपास है। लोग उसका तिरस्कार करते हैं और उसे अस्वीकार करते हैं। उसे हर तरह से बहिष्कृत कर दिया गया है। तो वर्तमान की असंगति। अय्यूब अध्याय 31 में अय्यूब अपनी अपेक्षाओं को संशोधित करके या न्याय पर अपना ध्यान केंद्रित करके नहीं बल्कि सुसंगतता की तलाश करता है। वास्तव में उसे यही करना चाहिए, लेकिन वह अभी तक वहां नहीं है, बल्कि वह निर्दोषता की शपथ के माध्यम से भगवान का हाथ थामने की कोशिश करता है। यह रणनीति उसकी समृद्धि वापस पाने के लिए नहीं बनाई गई है बल्कि हमेशा की तरह पुष्टि प्राप्त करने के लिए बनाई गई है। लेकिन वह ऐसा दृष्टिकोण अपनाता है जिससे चुपचाप उसे पुष्टि मिलेगी। संवादों से तुलना करें 2:39 से 5:29। तो आइए इसकी तुलना संवादों में जो हमने पाया था उससे करें, बस यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम पुस्तक की अलंकारिक रणनीति पर नजर रख रहे हैं। संवादों में मित्र अय्यूब को सुसंगतता और संतुलन खोजने के लिए एक समाधान पेश कर रहे थे। वे यह जानने में उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे कि उसका सामान कैसे वापस लाया जाए, लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ी। इससे पता चलता कि उसकी धार्मिकता लाभ से प्रेरित थी। सुसंगति प्राप्त करने का यही तरीका होता। उनका विश्वदृष्टिकोण ब्रह्मांड को न्याय पर आधारित मानता था। ऐसी स्थिति में जिस महान सहजीवन की हमने बात की है उसे सर्वोद्देशीय संतुलन के रूप में तुष्टिकरण के साथ अपनाकर सुसंगतता कायम रखी जा सकती है। यदि ईश्वर क्रोधित है तो उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, आप उसकी जरूरतें पूरी करें और फिर वह प्रसन्न हो जाएगा और वह आपकी देखभाल करने के लिए वापस आ जाएगा और आपकी समृद्धि बहाल कर देगा। तो यह विचार कि अय्यूब की रणनीति तब जैसा कि दोस्तों ने इसे चित्रित किया होगा, अय्यूब की रणनीति विलुप्तिकरण का मार्ग खोजने, देवता का अनुग्रह पुनः प्राप्त करने और उसकी समृद्धि और आशीर्वाद की बहाली के लिए होनी चाहिए, यही उनका समीकरण है। यदि अय्यूब उस विशेष रणनीति के माध्यम से सुसंगतता हासिल कर लेता तो उसे स्वहित वाली धार्मिकता का परिप्रेक्ष्य अपनाना पड़ता। अर्थात यह सब लाभ के बारे में है, सब सामान के बारे में है। पुस्तक के संवाद खंड में अंतर्निहित मुद्दा यह था कि क्या अय्यूब की धार्मिकता में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अय्यूब के प्रवचनों में फोकस बदल जाता है। वह संतुलन में सामंजस्य के लिए अपना रास्ता तलाशता है। वह मित्रों के सुझावों को अपनाने वाला नहीं है। उनका अपना मार्ग अंतर्निहित मुद्दा अब अधिक परिचित प्रश्न से संबंधित है, भगवान की नीतियों को धर्मी लोगों को पीड़ित होने की अनुमति क्यों देनी चाहिए। यदि अय्यूब के उद्देश्य पूरे हो जाते हैं तो उसकी कार्यप्रणाली अनिवार्य रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचेगी कि भगवान की नीतियां असंगत हैं। इस प्रकार ईश्वर की नीतियों को चुनौती जारी रहती है। संवाद अनुभाग में अय्यूब ने प्रदर्शित किया कि उसकी धार्मिकता उसके लिए समृद्धि के लाभों से अधिक महत्वपूर्ण थी। परमेश्वर की प्रतिष्ठा पर अय्यूब की धार्मिकता 5:29 से 6:39। अय्यूब के इस प्रवचन में यह स्पष्ट हो जाता है कि उसकी धार्मिकता उसके लिए ईश्वर की प्रतिष्ठा से अधिक महत्वपूर्ण है। तो अब यह एक समस्या है। वह ईश्वर के बजाय स्वयं पर आधारित सुसंगतता चाहता है। याद रखें, जब हमने त्रिभुज के बारे में बात की थी, अय्यूब अपने ही कोने में अपना किला बनाता है, अपनी धार्मिकता, और यह उसे यह प्रश्न करने के लिए प्रेरित करता है कि ईश्वर क्या कर रहा है। अध्याय 31 में उसकी बेगुनाही की शपथ का उद्देश्य उसे दोषमुक्त करना है। उस पुष्टि में वह बहाल सुसंगतता और संतुलन पाने की उम्मीद करता है। हालांकि अय्यूब ने कभी भी अपनी समृद्धि वापस पाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। वह समुदाय में एक नेक व्यक्ति के रूप में अपनी स्थिति फिर से हासिल करने में रुचि रखता है, लेकिन यह अभी भी निःस्वार्थ धार्मिकता है, क्योंकि यह धार्मिकता पर आधारित स्थिति है, सामान पर आधारित नहीं। अय्यूब की मासूमियत की शपथ बनाम भगवान की चुप्पी, अय्यूब 31:39 से 10:14। तो आइए एक नजर डालते हैं बेगुनाही की इस शपथ पर। यह पुस्तक के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। अय्यूब जो करता है वह यह है कि वह उन चीजों की पूरी सूची देखता है जिनके बारे में वह कसम खाता है कि उसने ऐसा नहीं किया है। वे सभी प्रकार के अपराध या अपराध हैं जिन्हें ईश्वर के विरुद्ध और धार्मिक जीवन के विपरीत माना गया होगा। इस परिदृश्य में जरूरी नहीं कि अय्यूब अपनी पूर्व समृद्धि को पुनः प्राप्त कर ले, लेकिन उसकी आशा है कि उसकी प्रतिष्ठा सही साबित होगी और उसकी धार्मिकता का दावा कायम रहेगा। यह कैसे काम कर रहा है? अय्यूब निराश हो गया है। यह शायद बहुत हल्का शब्द है, लेकिन वह परमेश्वर की चुप्पी से निराश हो गया है। याद रखें, संवादों के माध्यम से वह भगवान से प्रार्थना करता रहा कि वह दरबार में आए और बातचीत में शामिल हों। याद रखें, अय्यूब खुद को एक नागरिक मुकदमे में मुआवजे की मांग करने वाले वादी के रूप में देखता है, और इसलिए वह भगवान को अदालत में बुलाता रहता है। वह एक वकील, एक मध्यस्थ की मांग करता रहता है। वह यह टकराव चाहता है और भगवान की चुप्पी बहरा कर रही है। भगवान जवाब नहीं देंगे, इसलिए अय्यूब ईश्वर की चुप्पी से त्रस्त है, क्योंकि जब तक उसके अनुभव इतने नकारात्मक रहेंगे और ईश्वर नहीं बोलता है, तब तक धारणा यह है कि अय्यूब अनुग्रह से बाहर है, कि उसे दंडित किया जा रहा है। इसलिए अय्यूब निर्दोषता की इस शपथ में ईश्वर की चुप्पी के प्रभाव को उलटने की कोशिश कर रहा है। जब वह अपनी बेगुनाही की शपथ लेता है तो वह कसम खाता है कि उसने यह पूरी रेंज, लगभग व्यापक रेंज नहीं की है, उसने ये अपराध नहीं किए हैं। यह शपथ खाकर वह गेंद को भगवान के पाले में फेंक रहा है, क्योंकि शपथ खाकर यदि भगवान को अपनी शपथ बरकरार रखनी है तो भगवान को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। दूसरे शब्दों में वह ईश्वर को कार्रवाई के लिए बाध्य करने का प्रयास कर रहा है। अगर उसने इनमें से कोई भी काम किया है तो उसे मार डालो, उसे मार डालो। इसका मतलब यह है कि यदि भगवान ने उसे मार नहीं डाला तो उसे दोष मुक्त कर दिया जाएगा। यदि ईश्वर चुप रहे तो वह पुष्टि का दावा कर सकता है। कितनी चतुर रणनीति है। वह ईश्वर के विरुद्ध काम करने के बजाय अपने फायदे के लिए ईश्वर या कम से कम ईश्वर की चुप्पी में हेराफेरी करने की कोशिश कर रहा है। तो फिर अय्यूब अपनी पूर्व समृद्धि को पुनः प्राप्त नहीं कर पाएगा, लेकिन यदि वह दावा कर सकता है कि उसे इस तथ्य से सही ठहराया गया है कि भगवान ने उसे मारा नहीं है और इस तरह दोष मुक्त कर दिया है, तो वह समुदाय में अपनी स्थिति और स्थिति को पुनः प्राप्त करने की उम्मीद कर सकता है। देखो यह कैसे काम करता है। अय्यूब के अराजक प्राणी के रूप में भगवान 10:14 से 11:32। इस स्तर पर सुसंगतता प्रतिशोध सिद्धांत में नहीं बल्कि अय्यूब की आत्मधार्मिकता की व्यक्तिगत भावना में पाई जाती है। यदि अय्यूब इसमें जीत जाता है, यदि यह रणनीति काम करती है, तो इससे परमेश्वर की नीतियां नष्ट हो जाती हैं और उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है। यदि अय्यूब ईश्वर के साथ इस टकराव में जीत जाता है तो ईश्वर एक शक्तिशाली प्राणी बनकर रह जाता है जिसमें न तो ज्ञान होता है और न ही न्याय, वास्तव में एक अराजक प्राणी। अध्याय 3 में अय्यूब के विलाप को पूरी तरह से याद रखें। अय्यूब ने कहा था, आप मेरे साथ एक अराजक प्राणी की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हैं? और अब वह इसे पलट देता है और भगवान के साथ एक अराजक प्राणी के रूप में व्यवहार कर रहा है। यह उन नतीजों से भी बदतर है जो संवाद परिदृश्य से आ सकते थे। वहां ईश्वर को पूरे प्राचीन निकट पूर्व के देवताओं की तरह एक देवता में बदल दिया गया होगा जो महान सहजीवन में भाग लेगा और लाभ देगा ताकि लोग उसकी जरूरतों का समर्थन करना जारी रखें। यह अच्छा नहीं होता। भगवान की प्रतिष्ठा दाव पर 11:32 से 12:37। लेकिन अय्यूब के परिदृश्य में यदि अय्यूब इस रणनीति के माध्यम से जीत जाता है तो ईश्वर बिल्कुल भी ईश्वर नहीं है। अय्यूब की बेगुनाही की शपथ मेज पर एक गंभीर कार्ड रखती है। भगवान की प्रतिष्ठा दांव पर है। अब यह अय्यूब की प्रतिष्ठा नहीं है, यह अय्यूब की प्रेरणा नहीं है, यह ईश्वर की प्रतिष्ठा और ईश्वर की प्रेरणा है। इस अर्थ में अय्यूब के आरोप में ईश्वर, उसकी प्रतिष्ठा और उसकी नीतियों को चैलेंजर की तुलना में अधिक नुकसान पहुंचाने का खतरा है। यह एक गंभीर चुनौती है। जैसे जैसे हम अन्य चर्चाओं पर काम करेंगे, हम यह देखना शुरू करेंगे कि इसका समाधान कैसे किया जाता है। इससे पहले कि हम ईश्वर की प्रतिक्रिया पर पहुंचें, हमें एलीहू पर सावधानी पूर्वक नजर डालनी होगी और हम अगले खंड में ऐसा करेंगे। यह डॉक्टर जॉन वाल्टन और जॉब की पुस्तक पर उनकी शिक्षा है। यह 17:18 है, जॉब का प्रवचन, जॉब 29:31। 12:37।